के पूर्व ही कथा का शुल्क निश्चित करते हैं, तो भगवान की कथा को बेचते हैं, हैं? बेचते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक वक्ता वह है जो शास्त्रों की बात में बिना परिवर्तन किए यथारूप सुनाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है व्यावसायिक पुजारी। व्यावसायिक पुजारी कैसे? कुछ लोग मंदिर में भगवान की पूजा का व्यापार करते हैं, अर्थात जो कुछ भी मंदिर में चढ़ाव आता है उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। ये जिस प्रकार दुर्योधन भीष्म जी की रक्षा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसी प्रकार से ये लोग भी मंदिरों में भगवान की पूजा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो चित्र है जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो ये लेख था जो कि मैंने पढ़ के सुनाया। अब श्रीमद् भागवत में भीष्म जी ने कैसे देह त्याग किया इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। भगवान कृष्ण स्वयं जो है भीष्म जी को दर्शन देने के लिए खड़े हैं, विनम्र सेवक की तरह भगवान खड़े भीष्म जी के सामने। क्यों? क्योंकि भीष्म जी ने कहा कि जब तक मैं देह ना छोड़ दूं तब तक आप हिलोगे नहीं। तो भगवान जो है हिल नहीं सकते हैं, भीष्म जी के सामने खड़े हैं, और भीष्म जी जो है अब भगवान का जो है क्या कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो 11 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में जो भीष्म जी ने बोले हैं किस समय, अपने प्राण छोड़ने के समय भगवान को देखते हुए भीष्म जी ने भगवान से बोले हैं। तो वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। भीष्म जी ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता रहा, जो अनुभव करता रहा, जो चाहता रहा, वो विभिन्न वृत्तियों के अनुसार था, किंतु अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में ही ये सब लगा रहा हूं, अपनी सोचने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति सब अब कहां लगा रहा हूं, कृष्ण में लगा रहा हूं। ये कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतार लेकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, यद्यपि ये पूरा भौतिक जगत इन्हीं के द्वारा सज्जित है। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सांगे ससुक मुपगते क्वचिन विहार तुम प्रकृति मुपेयसे यन्भव प्रवाह। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म देव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। भीष्म देव जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आगे भीष्म जी कहते हैं, क्या श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, ये इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं। और कैसे हैं भीष्मदेव? तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण के हैं, इनका शरीर तीनों लोकों के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है, इनका चमकदार चमकता पीतांबर और चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं सिवा क्या कृष्ण के मुख का दर्शन करने के अलावा, और मैं कुछ इच्छा ना करूं। ये कह रहे हैं, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरे वरम वरम दधाने बपुर लग कोला वृतान नाबजम विजय सखेर तिरस्तु में बद्यां। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अर्जुन और भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कहां पर था? कृष्ण के चमकते वस्त्र पर था। और इस प्रकार से अपने शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं भीष्म जी, कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं भीष्म देव। इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भीष्म देव भूल नहीं पाते हैं क्या भगवान का वो रूप, जब भगवान के वस्त्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो भीष्म जी भगवान का वो रूप भूल नहीं पाते हैं। और आगे भीष्म जी कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश, कृष्ण के जो केश हैं वो लहरा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, घोड़ों की टापों से उठी धूल से मैले हो गए हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। कृष्ण के जो केश हैं लहरा रहे हैं और घोड़ों की टाप से जो उड़ी धूल है उससे मैले हो गए हैं, धूसरित हो गए हैं, तो कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। और श्रम के कारण मुखमंडल पर पसीने की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लग रहा है कृष्ण का मुख। मेरे पहने बाणों से बने घावों से उनकी शोभा और बढ़ गई, कृष्ण का शरीर और सुंदर हो गया। क्यों? कि मैंने बाण मारे तो उनके शरीर में घाव हो गए, तो कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं। मेरा मन इन्हीं कृष्ण के पास हमेशा रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। युधिष्ठिर गिरजो विधूम रविस्तम कचलोलित श्रमवार्य लंकृतास्ते मम निषद शरैर विभेद्यमान त्वचि विलसन् कवचे कवचेस्तु कृष्ण आत्मान। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म देव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा, यद्यपि भीष्म देव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म की मृत्यु सज्जा के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप और भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। भीष्म जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान को जो ना इतने बाण मारे और भगवान फिर भी मेरे ऊपर दया कर रहे हैं और अंतकाल में मुझे दर्शन देने के लिए खड़े हैं, तो कृष्ण की करुणा भी अद्भुत है। आगे भीष्म जी कहते हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन और दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीण कर दी। अपनी दृष्टि से शत्रुओं को मार डाला। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, अब तो तुम निमित्त मात्र बनो केवल। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से हो गया। मेरा मन ऐसे कृष्ण में स्थिर रहे। सपति सखी बचो निशम्य मध्य निज पर योर बल यो रथम निमेश स्थितवति पर सैनिक आयु रक्षणाम हृदयवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म जी जानते थे इस बात को क्या कि भगवान और उनके भक्तों के मध्य में शुद्ध दिव्य प्रेम होता है, इसलिए भीष्म देव कृष्ण को क्या कहते हैं, पार्थ सखा। पार्थ सखा कह रहे हैं। आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहे थे तो भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान के चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। निर्हृद प्रतना मुखम निरीक्ष सुजन वदान विमुख से दोष बुद्ध्या कुमति महारद आत्म विद्यायन चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। और आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति करके और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र हाथ में पकड़ाऊंगा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए उन्होंने हाथ में शस्त्र पकड़ लिया और रथ से नीचे उतर करके क्या कर रहे थे, मुझे मारना चाहते थे। तो इनकी कितनी दया है कि मुझे मारने के लिए रथ से नीचे उतर आए। तो रथ का पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़े। जब शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है तो कोई रक्षा नहीं कर सकता हाथी की, है ना। तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता था जब ये मारने के लिए दौड़े थे मुझे। तो उस समय जब दौड़ रहे थे तो इनका ऊपर का वस्त्र नीचे गिर गया था रास्ते में, तो बहुत सुंदर लगता है वो दृश्य। भीष्म जी को वो दृश्य जो है ना भूल नहीं रहा है, बहुत भगवान सुंदर लग रहे हैं जब गुस्से में भीष्म जी के को मारने के दौड़ रहे हैं और कपड़ा भी गिर गया। कपड़े का भी है, उनको ध्यान नहीं कि कपड़ा गिर गया उनका जमीन में। सुनने के मम अपहाय मत प्रतिज्ञाम यतम अधिकर तुम मम अप्लुतो रथस्तः धृतरथ चरणों भैया चलन गुरु हरि रविहंत में भम गतोत्तरीयम्। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की थी और दोषारोपण किया था कि वे अर्जुन को पिता के समान स्नेह के कारण मारने से हिचकते हैं। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन में पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया, उसने अपने पास वो तीर ले लिया जिससे वो अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वो तीर प्राप्त कर लिया और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा, अन्यथा उनका मित्र मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन प्राय हार चुके थे, परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वो भीष्म द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाले थे। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी भीष्म जी की प्रतिज्ञा। तो ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से उसी तरह झपटे जैसे सिंह हाथी पर झपटता है। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया। दुपट्टा भी कहता कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, आप गलत काम कर रहे हो। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया और उन्हें इसका होश तक ना रहा। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। तो ये जो है ना, भीष्म जी जो है वो भगवान का रूप याद कर रहे हैं कि कितना सुंदर भगवान का रूप है। गुस्सा से जो है ना मुझको मारने के लिए आ रहे थे। आगे कहते हैं भीष्म जी, जो मोक्ष के दाता है वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच टूट गया, उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो ऐसे में भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो बहुत आनंद की बात लग रही है। क्षति विषय हतो विस्तीर्ण दंता क्षत परे कसभम अभिसार मन्वधार्थम तभवत मे भगवान गतिर मुकुंद। तो तात्पर्य प्रभु लिखते हैं भीष्मदेव, यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर दिए होते, है कि नहीं? फिर ये लीला थोड़ी करते कि मारने के लिए दौड़ रहे हैं कृष्ण। जिसका जिसको मार डालना चाहते हैं, है ना, तो फिर मार डालने का प्रयास नहीं करते हैं, वो बिना प्रयास के ही मार डालते हैं, है ना। भीष्म को मार डालने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि मारना नहीं चाहते थे भीष्म को, इसलिए प्रयास कर रहे थे मारने का। जो काम करना चाहते हैं भगवान तो बिना प्रयास के ही कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त और भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं। अर्जुन पहले उनका हाथ पकड़े, है ना, लेकिन फिर भी अर्जुन को लिए दिए वो कृष्ण आगे बढ़ते गए। तो जब अर्जुन देखा कि मैं इनके हाथ को नहीं पकड़ पा रहा हूं तो पैर पकड़ लिया, अब पैर पकड़ लिया तो अर्जुन को घसीटते हुए 10 कदम तक जो है ना वो ले गए, तब रुके। कृष्ण का पैर पकड़े है अर्जुन और कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए 10 कदम पर जाकर के रोके है? तो वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में भी अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। आगे भीष्म देव प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर एकाग्र करता हूं। कौन? अर्जुन के सारथी, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। विजय रथ है कुटुंब आत्य पुत्री हृदय है रश्मि तत्णीय भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर यमि निरीक्षता गता स्वरूपम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं जिस प्रकार घड़े की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती रहती हैं। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्थ उनके नित्य संगी रहते हैं, इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाए कभी नहीं भुला पाए। तो अर्जुन भगवान का वो रूप नहीं देख पा रहे थे जो भीष्म देख रहे थे, क्यों? क्योंकि अर्जुन तो भगवान के पीछे थे, है कि नहीं? लेकिन भीष्म जी जो है ना ज्यादा आनंद ले रहे थे क्योंकि सामने थे, सामने थे, दर्शन कर रहे थे। तो फिर बाद में भीष्म जी क्या कहते हैं, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जब भगवान रासलीला में अंतर्धान हो गए तो गोपियां कृष्ण का अनुकरण करने लगी, कृष्ण की लीलाओं का स्वयं ही अनुकरण करने लगी गोपियां, इतनी तन्मय हो गई कृष्ण में। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनुकृत वत्त उन्मदान धाम प्रकृति मगन किल गोप बध्वाम। आगे भीष्म जी प्रार्थना करते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राष्ट्र यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों राजाओं और विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो भीष्म जी उस समय की याद करते हैं, सब राजाओं के बीच में कृष्ण की अग्र पूजा जो हुई थी तो बहुत आनंद का अवसर था। ऐसे तो पूजा सब कोई करता है लेकिन पूरे संसार भर के राष्ट्र यज्ञ था वो। तो राष्ट्र यज्ञ में क्या जानते हो कि संपूर्ण विश्व के राजा जो है मतलब एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और उन राजाओं के सामने जब कृष्ण की पूजा हुई तो सोचो कि कितना बड़ा जो है ना ये प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, है ना। पूरे जैसे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावना का प्रचार हो, तो वो कार्य जो है ना एक बार हुआ था युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में और वो एक स्थान में ही सब इकट्ठे हुए। राजा का मतलब जानते हो नरदेव, मनुष्यों के देवता। अगर राजा कृष्ण भावना भावित हो जाए तो पूरा संसार, एक राजा के द्वारा पूरा राज्य कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। तो भीष्म जी जो हैं उसको जो ना याद कर रहे हैं, मुनिगण ने पर ये संकोलेन्ताम सदसि युधिष्ठिर राजसु एसाम अरहणम कुपेद एक क्षणियो मम दृष्टि गोचर एस आविरात्मा। अब अंतिम श्लोक है, भीष्म जी प्रार्थना कर रहे हैं, अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं जो इस समय मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि अब मैंने उस भ्रांत धारणा को पार कर लिया है जो उनकी उपस्थिति के विषय में प्रत्येक हृदय में, यहां तक कि प्रत्येक मनोधर्म के हृदय में है, वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही है। तम एमम अहम अजम सहीर भाजाम हृदय हृदय दृष्टि कल्पिताना प्रतिदृश्य में विनय के धार के मेकम समधिगत उसने विदूत भेद मोहम। इस प्रकार से भीष्म जी ने अंतकाल में भगवान के रूप का चिंतन किया, भगवान की प्रार्थना की और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो चूंकि आज के श्लोक में दुर्योधन ने भीष्म जी की रक्षा की बात कही है इसलिए हमने भीष्म जी के बारे में कई बातें सुनी हैं। अच्छा, अब ये भीष्म जी शिखंडी से युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये जो शिखंडी है पिछले जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी, काशी के राजा की तीन कन्याएं थीं अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो स्वयंवर में भीष्म जी ने इन तीनों का अपहरण किया और जितने भी राजा थे उनको अकेले हराया और तीनों बहनों को ले आए। तो उनके दो भाई थे भीष्म जी के, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी तो विचित्रवीर्य के साथ शादी करना था उन तीनों बहनों की। उनमें से अम्बा ने कहा कि देखो प्रभु, मद्र के राजा शल्य से मैं प्रेम करती हूँ, वे मुझसे प्रेम करते हैं, तो यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उनके पास चली जाऊं। तो भीष्म जी ने कहा ठीक है चली जाओ। तो वो चली गई। तो हस्तिनापुर से वो गई मद्रास पैदल, एक जवान स्त्री अकेले गई हस्तिनापुर से मद्रास। अब जैसे भी हो उसने अपने चरित्र की सुरक्षा की, लेकिन वहां पर मद्र देश के राजा शल्य ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसी स्त्री को जिसका अपहरण किसी व्यक्ति ने कर लिया तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो अम्बा ने यह विचार करके कि शल्य की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि भीष्म जी ने उसका अपहरण किया, तो अब वो आई भीष्म जी के पास कि अब तुम मुझसे विवाह करो, क्योंकि तुमने मेरा अपहरण किया। भीष्म जी ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपने भाई से विवाह कराता तुम्हारा, परंतु अब मैं तुम्हारा विवाह अपने भाई से भी नहीं करा सकता, क्योंकि तुम अकेली गई हस्तिनापुर से मद्रास और मद्रास से हस्तिनापुर। कितना दूर है? बहुत दूर है। तो ऐसी स्त्रियां जो मनमाने ढंग से इधर उधर घूमती रहती हैं, ऐसी स्त्रियों को हम कभी भी नहीं रखते। तो अम्बा ने फिर अपना जीवन बर्बाद समझा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कारण क्या माना? भीष्म जी को कारण माना, जबकि भीष्म जी कारण नहीं थे, लेकिन भीष्म जी को उसने कारण मान लिया। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उसका दिमाग खुद ही कारण था, दुर्बुद्धि, कि जब अपहरण हो गया उसका तो उसको फिर विचार नहीं करना चाहिए कि अब मुझको सल्ले से शादी करनी है। तो अपनी गलती ना मान करके उसने भीष्म जी को कारण माना कि मेरा जीवन इसलिए बर्बाद हो गया है। तो फिर वो तपस्या करने लगी। जब तपस्या कर रही थी तो उसे परशुराम जी वहां मिले और उससे पूछा कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, सुंदर हो, जवान लड़की हो, तपस्या क्यों कर रही हो? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। तो परशुराम जी ने कहा कि भीष्म तो मेरा शिष्य है, मैं आदेश दूंगा तो वह तुमसे विवाह कर लेगा, चलो मेरे साथ। तो परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अम्बा से विवाह करो। तो भीष्म जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र के विरुद्ध आदेश देते हैं तो मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा। तो फिर युद्ध हुआ और भीष्म और परशुराम जी के साथ में युद्ध होता रहा काफी दिनों तक। आखिरकार परशुराम जी हार गए। तो फिर परशुराम जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली आगे से। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि आगे से कभी क्षत्रियों को युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सीख लेते हैं और फिर हरा देते हैं। तो क्षत्रियों को कभी युद्ध विद्या नहीं सिखाऊंगा मैं। और फिर जो अम्बा थी वो फिर तपस्या में लग गई और अब इस भावना से तपस्या करने लगी कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया है तो मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूंगी। अब राजा द्रुपद के घर में वो पैदा हुई तो पैदा हुई लड़की के रूप में, लेकिन राजा द्रुपद ने अपनी पत्नी से ये कह दिया था कि अगर मुझे लड़की हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो राजा द्रुपद की पत्नी ने इस डर से कि राजा द्रुपद कहीं आत्महत्या न कर ले, ये कह दिया कि लड़का हुआ है। उसको इस प्रकार कपड़े पहना करके रखती थी जैसे लड़का हो, तो उनको पता नहीं चला कि लड़की है। और ये सैनिकों के साथ में शिकार खेलने जाती थी और लड़कों की तरह व्यवहार करती थी। और राजा द्रुपद ने इसका विवाह भी निश्चित कर दिया एक राजा की पुत्री के साथ। उस राजा ने अपने जासूसों से पता लगवाया कि कैसा लड़का है। तो जासूसों के द्वारा पता चला कि लड़का नहीं है, वो लड़की है, और उस समय शादी हो चुकी थी। तो फिर खतरे की स्थिति आ गई कि क्या किया जाए। और उस राजा ने चढ़ाई कर दी द्रुपद के ऊपर कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी लड़की का जीवन बर्बाद किया। तो अब ये शिखंडी ये सोच करके कि मेरे कारण मेरे पिता के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है, वो जंगल में गई तपस्या करने के लिए। तो वहां एक यक्ष मिला, उसने कहा कि तुम किस लिए आई हो तपस्या करने के लिए? तो उसने पूरी कहानी बताई। उस यक्ष ने कहा कि देखो, 3 दिन के लिए मेरा पुरुषत्व ले लो और तुम्हारा स्त्रीत्व तो मैं ले लेता हूँ, मैं स्त्री बन जाता हूँ और तुम पुरुष बन जाओ 3 दिन के लिए, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, 3 दिन के बाद वापस आकर के बदल लेना, ठीक है? तो पुरुष बन गया ये शिखंडी और वहां जाकर के उसने बता दिया कि मैं पुरुष हूँ और शिखंडी के विषय में जो भ्रम पैदा हुआ था वो दूर हो गया, उसका विवाह हो गया। और 3 दिन के बाद वो जंगल में उस यक्ष के पास गया और कहा कि धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी सहायता की है, अब अपना पुरुषत्व वापस ले लो और मेरा स्त्रीत्व वापस दे दो। परंतु इस बीच में क्या हुआ कि इन्हीं 3 दिनों के अंदर कुबेर जो यक्षों के राजा थे वे उस जंगल में आए, तो सभी यक्ष उनका स्वागत करने के लिए आए, लेकिन वो यक्ष नहीं आया क्योंकि वो स्त्री बना हुआ बैठा था। जब कुबेर ने पूछा कि वो यक्ष क्यों नहीं आया, तो दूसरे यक्षों ने बतलाया कि उसके साथ क्या घटना घटी है। तो कुबेर नाराज हो गए, वे बोले वो बड़ा मूर्ख है, अब मैं उसे साफ देता हूँ कि वो अपना स्त्रीत्व कभी भी नहीं बदल सकेगा, वो जीवन भर स्त्री ही बना रहेगा। अब जब शिखंडी आया तो उस यक्ष ने बता दिया कि अब मैं अपना पुरुषत्व तुमसे वापस नहीं ले सकता हूँ, ऐसी भगवान की इच्छा है कि अब तुम जीवन भर पुरुष बने रहो तथा मैं जीवन भर स्त्री बना रहूंगा। तो इस प्रकार शिखंडी जीवन भर के लिए पुरुष बन गया। ये बात भीष्म जी को पता थी कि किस प्रकार अम्बा ने तपस्या की, फिर वो लड़की के रूप में पैदा हुई और फिर किस प्रकार वह पुरुष बनी, इसलिए लिए उन्होंने दुर्योधन को बतला दिया था कि शिखंडी से वे युद्ध नहीं करेंगे, और इस प्रकार शिखंडी के ही कारण उनका युद्ध में पतन हुआ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गोंडताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे Ram Ram Hari Hari।